Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग.
यस थैंक यू मनोज. लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फ्रेंड्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस ब्रेक 7-डे विनिंग स्ट्रीक. सेंसेक्स फेल बाय 729 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 23,487. मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू लॉन्च द 12th ट्रांच ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस इन न्यू दिल्ली टुमारो. एंड Global crude oil prices rise. Brent crude trades at $73.64 per barrel.
लगातार सात सत्रों में तेजी के बाद आज हुई मुनाफा वसूली. प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 729 अंक लौट का. निफ्टी 23,487 पर बंद हुआ. कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का 12वां चरण कल नई दिल्ली में शुरू करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $73.64 प्रति बैरल के आसपास आई. बाजार में आज चौतरफा मुनाफा वसूली हमने देखी. पिछले सात सत्रों से लगातार तेजी का दौर चल रहा था और बाजार एक स्तर पर पहुंचने के बाद आज निवेशकों ने अपना थोड़ा सा मुनाफा काटा. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स चौतरफा बिकवाली से 729 अंक यानी 0.93% घटकर 279 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,168 से लेकर 77,194 अंक के बीच ऊपर नीचे होता रहा था. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 181 अंक यानी 0.77% नुकसान के साथ 23,487 पर बंद हुआ. अंतरदिवसीय कारोबार में निफ्टी भी 23,737 से लेकर 23,452 के बीच झूलता रहा. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली आज हमने देखी. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.62% घाटे में रहा. स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.07% की गिरावट हुई.
Alright, let's take a look at the stocks in detail now. Well, after 7 consecutive sessions of gains, the Indian stock markets ended lower today as investors booked profits across sectors. Sensex fell by 729 points or 0.93% to close at 77,288.50. During the session, the index fluctuated between an intraday high of 78,167.87 and a low of 77,194.22. Nifty also declined, settling 181 points lower at 23,486.85, down 0.77%. The index had touched an intraday high of 23,736.50 before slipping to a low of 23,451.70. 26 stocks in the BSE Sensex closed in the negative territory. Mid and small cap stocks also witnessed losses, with the Nifty Mid Cap 100 index closing 0.62% lower and the Nifty Small Cap 100 index dropping 1.07%. Among sectoral indices, all except Nifty Auto ended in the red, reflecting a broad-based sell-off. However, Nifty Auto managed to post a slight gain of just 0.02%. The decline was primarily driven by profit booking after the recent market rally, as investors chose to cash in on their gains. Meanwhile, the Nifty and Sensex have gained 5.7% over the last 7 sessions, turning positive for the year, driven by foreign capital inflows and growing optimism about improving domestic macroeconomic conditions. So, Dr. Sharma, not much of a change from 78,000 plus to 77,000 plus today. But after 7 consecutive sessions of gains, what makes the markets go down?
Markets are becoming uncertain once again because of some forthcoming global events like the April 2nd, which is very, very crucial for the global market. So the tariff reciprocal can come once again. So that's why markets are becoming cautious and profit booking is observed in the markets at the higher level. Mm-hmm. As you rightly mentioned, that there was a 7 days upside in the markets, and people were very bullish also that now markets are regaining the lost momentum. But the cautious approach remains, and the people are booking profits because of the forthcoming uncertainties in the global market.
यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम पहले श्रोताओं को रुपए की जानकारी देना चाहेंगे. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे मजबूत हुआ और 85.69 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 104.32 पर चल रहा था. एक बार फिर से घरेलू शेयर बाजार की ओर लौटना चाहेंगे हम, और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि बाजार में जो लगातार हमने तेजी देखी उसमें मुख्य भूमिका जो विदेशी निवेशक रहे हैं, FPIs रहे हैं, उनका इनफ्लो एक बार फिर से बाजार में दिखा है. तो तात्कालिक जो आज गिरावट के पीछे कारक भले ही जो कुछ अनिश्चितताएं रही हों या अन्य कारक रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर जो FPI हैं उनका लौटना वो क्या दर्शा रहा है, और भारतीय जो पूंजी बाजार है उसकी मजबूती को या भारत के भविष्य को लेकर जो दुनिया भर में अर्थशास्त्री यहाँ सबसे तेज गति से प्रगति होता देख रहे हैं उसके पीछे उनका विश्वास जगना, क्या सब मुख्य यानी क्या अंदाजा लग रहा है आपको FPI के रुख को लेकर?
देखिए, जब मार्केट में हमने काफ़ी डेसेलिरेशन देखी, हमने देखा कि मार्केट जो थी निरंतर डेसेलिरेट हो रही थी और काफ़ी करेक्शन, डीप करेक्शन हमने देखी. 22,000 के भी नीचे हमने मार्केट्स को
जाते हुए देखा.
तो उस टाइम पे एक वैल्यू बाइंग की जो संभावना बनी और वो एक मटेरियलाइज भी हुई, लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग की जिससे कि वापस रैली री इमर्ज हुई और जो FIIs थे उन्होंने वापस रुख किया. और वही कारण है कि रुपी भी हमारा स्ट्रेंथन हुआ कि लगभग कोई $5 बिलियन जो है वापस जो कैपिटल इन्फ्लो हुआ है वो डेट मार्केट में और कुल मिला के जो स्टॉक मार्केट में, और जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट एक निरंतर गति से बढ़ रही थी. लेकिन जब अभी कुछ ही दिन बचे हैं, जब हमारे पास आगे ये संभावनाएं हैं कि भी वर्ल्ड इकोनॉमी में वापस एक उथल पुथल होने की उम्मीद है, कि जो टैरिफ्स हैं उनके ऊपर वापस एक दौर होगा, तो उससे जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अभी वापस लौट आई है और हम समझते हैं कि आने वाले जो सेशंस हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं.
If someone wanted to invest now in the markets, is this the right time or one should weigh the options whether it's a short term or long term and then buy accordingly?
I think right time was at around 22,000 Nifty, but now this is not the right time because markets are becoming again very, very volatile because of the forthcoming uncertain events. But if somebody really wants to invest that they can't escape from this scenario of the markets, then they can invest at around 20% of the total anticipated money to be invested in the market, but not fully, because markets can decelerate further because of the uncertainty, as US is facing macroeconomic challenges, like the growth rate is decelerating. They have now anticipated that the economy will grow at 1.7% instead of 2.1%. And inflation trajectory will be elevated side from 2.1 to 2.7%. So inflation is increasing anticipated to increase and the growth is anticipated to decrease. So this is impacting the whole macroeconomic scenario and the positivity of the investors in the US market. That's why dollar is also weakening. And the second thing is consumer confidence is also decelerating. The consumer confidence, the retail sale has come down from their anticipation of 0.7% to 0.2% only last year. So all these fundamentals are weakening. That's why the markets are confused once again that how to believe on the US market or how to believe on the present policy stance, which is becoming very, very volatile and uncertain for the investors to invest in the market. And they are moving here and there to find the actual growth partners. And India seems to be one of them.
There seems to be a clash of national fervor. It's India first versus America first. Is there a contradiction? And secondly, if US is going through recession or near recession, would that affect our exports and other markets like the IT sector, where we have a lot of we export a lot of our personnel to the US and European markets? How do you see that going, assuming that there is high inflation and there is a move towards recession there? How does that affect the Indian market?
Yes, Lalima ji, because the world is not in isolation and the countries are not in isolation. We can't say that we are number one or we are the India first or America first, because all these markets are driven by the actual numbers, which are observed by the investors or the people or the policymakers. And we have numbers. We have a great growth numbers.
Yes.
Our economy is growing in a robust growth trajectory. We have a growth rate of more than 8% during the last three financial years. And for the current year also, we are the fastest moving economy among the major economies. Our inflation trajectory is coming down.
Yes.
Now inflation is at 3.61%. So that is a benign trajectory for the Indian economy at this juncture. Below 4% is tolerable, despite so many headwinds at the global front. And our exports are also making new highs every year. And our rupee, though some volatile, but still finding some stability in the global marketplace. So all these parameters are supporting the Indian economy. And we have numbers to show. But we are not saying that we are number. Our numbers are reflecting that India is the resilient economy. India is the fastest moving economy. India is the growth promising economy. India is going to become the world economy by 2047. But the uncertainties are created at the world level as the tariffs are not structured rightly. And they are now confused, I would say, that how to move forward, how to settle these all quagmire. And they are facing the heat of their own announcements.
हाँ, ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ें और चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है. निवेशकों की खरीदारी से हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.59% लाभ के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.06% की वृद्धि हुई. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.65% बढ़कर बंद हुआ. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.23% की तेजी आई. उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.04% घाटे में रहा. यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख दिख रहा था. अंतिम रिपोर्ट आने तक अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.62% घाटे में चल रहा था. फ्रांस के कैक 40 में 0.64% की कमी दिख रही थी. उधर निवेशकों की लिवाली से लंदन का फुटसी 100 0.17% ऊपर चल रहा था.
Look at the US markets now. Well, certainly can't be ignored because they kind of dominate the markets at the moment, the global markets. US stocks ended higher yesterday as investors assessed consumer sentiment data and bet on a more flexible trade policy stance from the Trump administration next week. The Nasdaq composite gained over 0.46%, S&P 500 rose over 0.16%, and the Dow Jones Industrial Average ended over 0.01% up. Earlier on Monday, US President Donald Trump has said that automobile tariffs were coming soon, while suggesting that not all proposed tariffs would be enforced in an April 2nd announcement on which Wall Street is focused. Any discussion about economy, and it's the US president's utterances which loom large. The shadow exists everywhere. Now, because of his utterances on this, and he's starting a tariff war, he talked about Canada, China, and Mexico. India seems to be next in the firing line. Are we now moving towards a multipolar world? We're also trying not to have all the eggs in one basket and going for bilateral trade agreements. Is that the way the world is going to be now? Multipolar, bilateral, and moving away from US and, joining together, joining hands together.
Because all these wars, trade war, are not in favor of anyone. We have to move forward with the collaboration, with the bilateral agreements, with the multilateral agreements, because now global economy is strongly connected. And yes. Each economy depends on other economy, and they sometimes buy the goods and services from others. And there is a great exchange of goods and services between the many economies. That's why the international trade is in trillions of dollars. Mm-hmm. So now creating all these hustle bustle or such kind of, I would say, tariff wars are not in favor of any economy. So they have to settle end of the day that let's move forward with the bilateral agreements or the multilateral agreements, because all these trade wars will impact the economic scenarios, firstly, then the inflation trajectory, secondly, and thirdly, the interest rate scenario. So nobody is going to gain from such kind of tariff tussles, tariff tensions.
Aaiye, khabron ka silsila aage badhaein.
All right. Ministry of Coal will launch the 12th tranche of commercial coal mine auctions in New Delhi tomorrow. Among the offered mines, 13 coal mines are fully explored, while 12 are partially explored, providing opportunities for both immediate and future development. The 12th tranche of commercial coal mine auctions aims to attract significant interest from domestic and international investors, reinforcing India's commitment to self-reliance in energy and industrial growth. Dr. Sharma, now India is producing coal as never before, but we are also trying to harness renewable energy with our investment in solar energy, in which we are doing pretty well. Also wind energy, also nuclear energy. In this whole and at one point we can also say that the consumption of energy is also a kind of a benchmark for a country's progress. Where do you see India going in this whole picture, as far as coal and renewable energy and other energy sources are concerned?
Yes, Lalima ji, because energy is needed for the growth of the economy and development of the economy. And energy is a major growth driver to become Viksit Bharat by 2047. And as you rightly said, that we are focusing on the clean energy also. And yes, we have a great target of 500 gigawatt by 2030. And we have already achieved more than 50% of that target. But coal is a major growth driver of Indian economy, major growth driver of energy environment in the country, because 55% mix of energy is coming from the coal side, that is supported by the coal. And at around 74% electricity generation is also with the support of the coal. And during the last 10 years, we have progressed significantly from 2014-15 to right now, 2024-25. And the energy production of coal has almost doubled from those levels, at around somewhere between 500 to 600 million ton production of coal to now at around 1,000 million ton. And for the current year, we are becoming a 1 billion tons coal production economy. So this is a great achievement, and this will support the support our thoughts, our plans, and our journey for the developed economy going forward. Because energy is needed to move forward, and energy is needed for a great journey also.
And also the opening up of the coal mines to private players, has that also helped?
Yes, that's why the public-private partnership and the private players, all these developments are helping, because that's why we are able to increase the coal production, doubling in the last 9-10 ईयर्स।
यहाँ पर हम एक अहम पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा। कोयले के खान में आते ही हाथ काले हो जाते हैं और बहुत काले दौर हमने देखे। नीलामी का जो ये 12वां चरण शुरू हुआ है और जो नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि पारदर्शिता और शुचिता इन नीलामी प्रक्रियाओं ने किस तरह बढ़ाई है और किस तरह कह लें सरकार का ये कदम पूरे इस ऊर्जा क्षेत्र को स्वच्छ करने में कामयाब हुआ है।
देखिए, जो आपने कहा कि कोल की नीलामी में हाथ काले होते हैं, तो
जी जी जी,
मैंने शायद किसी फिल्म में देखा था कि कुछ ऐसे काम करने वालों का मुंह भी काला हो जाता है।
बिल्कुल,
तो उसी वजह से हम कहेंगे कि अभी बहुत ज्यादा पारदर्शिता है। नाउ वी आर टोटली ट्रांसपेरेंट, दैट्स व्हाई दैट इज नाउ रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम नंबर्स।
बिल्कुल,
हमें नंबर्स जो बता रहे हैं कि हमने एक अच्छी प्रोग्रेस की है। दैट इज नॉट कि बाय सेइंग कि हम वैसे बोले, दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स दैट वी आर प्रोग्रेसिंग एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर रोबस्ट इन अवर कोल प्रोडक्शन।
यहाँ एक और अहम सवाल, हमारा जो कोल का उत्पादन है और जो हमें फिर भी यानी कोयला के आयात की आवश्यकता पड़ती है, उस पर थोड़ा समझना चाहेंगे कि किस तरह का हमारा अपना उत्पादन है और किस तरह हम अच्छी गुणवत्ता के कोयले का आयात भी किया करते हैं।
जी बिल्कुल, हमने जब हम डेफिसिट में थे, हमारे पास आज से 10 वर्ष पहले की जो स्टोरी थी वो बहुत ही ख़राब थी। उस टाइम पे हम डिपेंडेंट थे, बहुत ही हाईली डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से हमारे जो इंपोर्ट थे बहुत इंक्रीज हो रहे थे। हमारा रूपी भी उस टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंटली डेप्रिशिएट हो रहा था, जिसकी वजह से क्रूड भी काफ़ी हाई पे था, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस। तो जो पिछले 10 वर्षों में हमने अपना एफर्ट्स किए, जिसकी वजह से हम अपना जो इम्पोर्ट है बहुत कम कर पाए। इस साल भी अगर हम इसी साल की बात करें तो हम अपने इम्पोर्ट्स में $5 बिलियन की कमी कर पाए हैं, जो हमारे फॉरेक्स को सपोर्ट कर रहा है। $5 अरब जो है मनोज जी, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर है। जो अभी हम देख रहे हैं कि एक पूरे महीने में जो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लो है, अभी हम बात कर रहे थे कि FIIs फ्लो जो है वो स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट में मिला के $5 बिलियन अभी हम अट्रैक्ट, तो हमने कोल के जरिए भी 5 बिलियन से ज्यादा इस बार सेव किया है बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ऑफ कोल। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एंड द एक्सपेंडेड प्रोडक्शन ट्रैजेक्टरी इन द कोल माइन। और जितना रोजगार है, रोजगार भी लोगों को जो इसे नॉट ओनली के हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो लगभग कोई 5 लाख माइन वर्कर्स हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है। 350 से ज्यादा जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं, तो 5 लाख वर्कर्स भी इससे जुड़े हुए हैं। तो एक रोजगार भी पैदा हो रहा है, फॉरेक्स भी सेव हो रहा है, हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी जो एक हमें एक लॉन्गर टर्म ट्रैजेक्टरी में चाहिए, वो भी हमारी फुलफिल हो रही है।
And validates the Atmanirbhar Bharat concept as well.
Yeah.
All right, moving on, the 10th BRICS policy planning dialogue culminated in Brasilia, Brazil yesterday. The two-day dialogue brought together policy banners from Brazil, Russia, India, China and South Africa, alongside senior representatives from the expanded BRICS membership. The Ministry of External Affairs in a statement said the dialogue witnessed discussion on global health cooperation, the evolving international trade and financial scenario, climate action, artificial intelligence, governance, and reforms of multilateral peace and security frameworks. Discussions were held on a wide range of global geopolitical issues as well as regional developments. The Indian delegation was led by External Affairs Ministry Joint Secretary of Policy Planning and Research, Raghuram S.
यहाँ पर एक फिर कहने के सवाल बनता है कि जो यानी शुल्क का बढ़ता हुआ या कहने कि तेज खेल होता हम देख रहे हैं दुनिया भर में, उसमें BRICS जैसे संगठन, इनकी क्या भूमिका बनती दिख रही है आपको आने वाले दिनों में?
देखिए, ब्रिक्स को जो ब्रिक्स के मुद्दे रहते हैं, खास करके जो स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी और फिर जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ऑल दीज पैरामीटर्स आर देयर टू डिस्कस, बट there must be some discussion on the tariffs also, because now these countries are very much in the prominent position in the global trade. So that's why the tariff should also become a major point of discussion to move forward and to help each other and to make a strong voice in the international arena.
News just in. Parliament has passed the Banking Laws Amendment Bill 2024, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. The bill seeks to amend the Reserve Bank of India Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, the State Bank of India Act 1955, the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1980. The bill seeks to increase the option for nominees per bank account to 4 from existing 1. The bill also proposes to redefine substantial interest for directorships, which could increase to 2 crore rupees instead of the current limit of 5 lakh rupees. The bill empowers banks to decide the remuneration of their auditors.
Yani ek keh lein ki samayik kadam jise sansad ne parit kar diya. Kya tippani karna
chahiye isme jo bahut hi jo janta ke liye ek welfare ke liye ek bahut acha jo announcement hai ki nominee ka jo ek hi hota tha uski jagah pe 4 kiye ja sakte hain to ek bahut badi development hai jisse ki kai baar unfortunately agar nominee bhi matlab kai baar aise kisi karan se durghatnagrast ho jaye to bada mushkil hoti thi unke jo waris the unko जी जी करने में तो अभी एक ऑप्शन रहेगी तो दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट कंसीडरिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी.
आइए आगे बढ़ें. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया है कि विनियमनों को वित्तीय समावेशन के विस्तार में अनपेक्षित बाधाएं नहीं डालनी चाहिए. मुंबई में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम के एक समारोह में श्री मल्होत्रा ने कहा कि नीति निर्माताओं को अपने उपायों के साथ कट्टर रुख नहीं अपनाना चाहिए. वित्तीय समावेशन में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि अब देश में 94% वयस्क लोगों के पास अपने बैंक खाते हैं. श्री मल्होत्रा ने नियामकों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वित्तीय समावेशन बढ़ाने में विनियमन अनावश्यक बाधाएं न पैदा करें. उन्होंने ग्राहक अधिकारों और सुविधा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता भी जताई.
Well, the Ministry of Corporate Affairs, MCA, will host a virtual candidate open house tomorrow for the PM internship scheme, building on the success of its previous sessions. The interactive forum will offer invaluable insights and real-time answers to applicants' most pressing questions. A panel of experts, including the MCA senior officials, the project management team for policy and procedural concerns, and technical specialists will give real-time answers to applicants' queries. Held on a weekly basis, these open houses serve as a crucial touch point for aspirants navigating the application process. Indeed, this has been a very successful scheme, and the government has been trying to improvise all the time to get more and more people into the fold, especially youngsters in the PM internship scheme. A look at the oil prices now. Oil prices edged higher today on supply concerns, with the US stepping up efforts to limit Venezuelan and Iranian oil exports, while a bigger than expected drop in US crude inventories also led support. Brent crude was trading over 0.85% at 0.85% up at $73.64 per barrel. WTI crude was also trading over 0.91% up at $69.63 per barrel when reports last came in.
बाजार में तेल के दाम किस दिशा में जाते दिख रहे हैं, खासतौर से जो वेनेजुएला पर कह लें कि जो प्रतिबंध ताजा दिख रहे हैं और जो ट्रंप साहब की घोषणा है उसके मद्देनजर किधर जाता दिख रहा था, बहुत संक्षेप में.
देखिए जो मनोज जी, उतनी डिमांड ट्रैजेक्टरी तो स्ट्रांग नहीं है, बट ये जो वॉलीटैलिटी है, जो न्यूज बेस्ड खास करके जो ऐसी टसल्स हैं उनकी वजह से प्राइसेस में एक टेम्परेरी जो स्पाइक हो सकती है.
आइए चलें सराफा बाजार. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.22% बढ़कर 88,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी 0.69% बढ़कर 1,160 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ध्यान दें तो अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.24% बढ़कर 87,762 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.77% बढ़त के साथ 99,914 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
जी शुक्रिया मनोज जी।
एंड फ्रेंड्स बिफोर वी रैप अप हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस ब्रेक 7-डे विनिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स फेल बाय 729 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेस एट 23,487। मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू लॉन्च द 12th ट्रांच ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस इन न्यू दिल्ली टुमारो। And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $73.64 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. We'll see you again tomorrow at 6:30 sharp on Market Mantra. Till then, namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.